पॉडकास्ट आपको सेफगार्डिंग रिसोर्स एंड सपोर्ट की तरफ से पेश किया जा रहा है।
मेरा नाम फौजिया वकार है और मैं वफाकी मुतसिब हूँ पराए हरास की, जो कि काम की जगह पे अंग्रेज़ी में उसको सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट एट द वर्क प्लेस कहते हैं। और हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के अलावा हम प्रॉपर्टी राइट्स के साथ भी डील करते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ख़वातीन की, चाहे विरासती जायदाद हो या कि अपनी बनाई हुई, अगर उसमें कोई फ्रॉड हुआ है या उनसे छीन गई है तो वो उसका हक दिलाने में हमारा दफ्तर एक अहम किरदार अदा करता है।
थैंक यू सो मच मिस फौजिया फॉर योर इंट्रोडक्शन, आपके तारुफ़ का शुक्रिया। अब हमारा RSH का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमारा एक सीरीज़ है जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है, जिसके अंदर जो भी प्रोमिनेंट लोग होते हैं कंट्री के अंदर हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू में हम कुछ सवालात करते हैं और बेसिकली वो जो सवालात होते हैं वो जस्ट एजुकेशन के बेसिस पे होते हैं कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं, जो सहूलियात मौजूद हैं और जो लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं हमारी कंट्री में। आप जानती हैं कि हमारे पास जो एक नॉलेज है इसकी PSEA के हवाले से, स्पेशली हमारे जो लॉज हैं उसकी बहुत मिनिमम है, बहुत ज़्यादा जो है वो महदूद नॉलेज है, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि आपके थ्रू ये मैसेज जो है वो हम लोकल ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा सकें जो सिंध में बहुत ही छोटे पैमाने पे काम करती हैं। हमारे कुछ सवालात हैं, 5 सवालात होंगे, जिसके ऊपर हम पहले तो ये जानना चाहेंगे आपको पर्सनल जर्नी, बिकॉज़ यू आर सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट एज़ वेल, और आपका एक बहुत लंबा जो है वो जर्नी रह चुका है एज़ अ सेफ गार्डिंग NPSEA एक्टिविस्ट। तो पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि हाउ वॉज़ योर जर्नी, और ये कि आप किस तरह से यू गेट इन्वॉल्व इन टू द गवर्नमेंट एज़ वेल एंड हाउ यू एक्सपांडेड योर विजन एंड हॉराइज़न एज़ वेल।
पहले तो मेरे ख्याल से बहुत अहम है कि सेफ गार्डिंग और PSEA को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, वो आई गेस आपके ऑडियंस को पता होगा। मकसद ये है कि ख़वातीन को तशद्दुद से बचाया जा सके और उनकी जो हरासमेंट है या हरासगी उससे बचाया जा सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तशद्दुद है ख़वातीन के ऊपर, वो जिस्मानी के अलावा ज़हनी भी होता है और मुआशी भी होता है। यानी कि ख़वातीन को ज़हनी तौर पर टॉर्चर भी किया जाता है और मारा पीटा भी जाता है और उसके उनके पैसे बंद करने की धमकियां या पैसे बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जिसका मकसद उनको चुप कराना होता है। तो इस काम के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें फ़िज़िकल वायलेंस को या जिस्मानी तशद्दुद को रोकने की भी बहुत ज़रूरत है और ज़हनी वायलेंस जैसे हम कहते हैं या ज़हनी तशद्दुद, चाहे वो हरासमेंट के फॉर्म में हो या दूसरे को हर वक्त उसकी तज़हीक करना या उसको जलील करना उसके फॉर्म में, उसको रोकने की बड़ी ज़रूरत है। तो मेरा जो पर्सनल जर्नी है वो मैं पिछले कम से कम 25-30 साल से ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रही हूँ, और ह्यूमन राइट्स पे काम करने का मतलब ये है कि किसी किस्म की जो इंसानों के साथ तफरीक होती है या उनको उनके हक, जायज़ हक ना हो दिए जाएँ, उस पे काम करना है। ग्रास रूट्स एक्टिविज़म में भी, यानी कि खुद भी इन्वॉल्व होना राइट्स की डिमांड के लिए, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी, बाहर भी मैंने काम किया, कनाडा में भी कई साल काम किया और ह्यूमन राइट्स पे ही काम किए, और ये काम एक्टिविज़म के अलावा मैंने हुकूमत के साथ भी किया है, पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी हुकूमत के साथ मिल के ह्यूमन राइट्स प्रमोशन के लिए काम किया। पाकिस्तान में मैं कोई 2009-10 से ये काम कर रही हूँ एक्टिवली। पहले एक गैर सरकारी इदारा शिरकत गाह के नाम से, जो ख़वातीन के लिए एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशंस का काम है, वहाँ पे मैंने एज़ अ डायरेक्टर ऑफ एडवोकेसी काम किया 4 साल तकरीबन। उसके बाद फिर मैं पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन, जो एक सरकारी इदारा था, पहली दफ़ा फॉर्म हुआ था पंजाब में, उसमें अपॉइंट हुई एज़ द फर्स्ट फाउंडिंग चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी वही होते हैं, और उन इस अदारे का बुनियादी मकसद ख़वातीन के ख़िलाफ़ हर किस्म की तफरीक या डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है और वायलेंस को भी रोकना है। उसके एम्बिट में ना सिर्फ ख़वातीन के जिस्मानी तशद्दुद को रोकने के लिए कवानीन या और तरह की तफरीक के लिए कवानीन लाने थे, بلکہ بہت اہم یہ بھی تھا کہ ایسے اسٹیپس لیے جائیں جہاں جس میں جس سے خواتین کی امپاورمنٹ ہو سکے، کیونکہ ہر قسم کے ڈسکرمنیشن کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پرٹیکولر گروپ کو اسٹرانگ کیا جائے۔ جب تک ایک گروپ مضبوط نہیں ہوتا، معاشی طور پہ خاص طور پہ مضبوط نہیں ہوتا، تو اس کی ڈسکرمنیشن کنٹینیو کرتی ہے یا اس کے خلاف جو ایکشنز ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو امپاورمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے خواتین کے لیے، تو دونوں سائڈوں پہ یہ کام ہو رہا تھا۔ ایسے قوانین میں مدد جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹس پنجاب میں 2016 میں جو پاس ہوا، اس پہ کام کرنا، یا ایسے قوانین جن سے خواتین کی امپاورمنٹ بڑھے، جیسے کہ فیئر ریپرزنٹیشن آف ویمن ایکٹ، جس کے تحت کم سے کم خواتین 33% تمام بورڈز، کمیٹیز اور ٹاسک فورسز میں ہوں، ان پہ بہت کلوزلی کام کرنا۔ بہت اہم ہے یہ ایک وضاحت کہ ہمارا جو ادارہ ہے وفاقی محتسب کا، اس کا اختیار ان اداروں کے اوپر ہے، چاہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، جو کہ وفاقی کہلائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سرکاری ادارے جن کے دفاتر پورے پاکستان میں چھوٹے شہروں میں بھی ہیں، آپ کو اگر مثال دوں تو ایف آئی اے کے دفاتر پورے پاکستان میں ہوں گے، پی آئی اے کے دفاتر چھوٹے شہروں میں بھی ہوں گے، انشورنس کمپنیز کے دفاتر جو نیشنل ہیں پورے پاکستان میں ہوں گے، بینکوں، بہت سارے بینکوں کے نیچرلی برانچز پورے پاکستان میں۔ تو کوئی بھی ایسا ادارہ جس کو ٹرانس پروونشل یا کہا جا سکے، یعنی کہ وفاقی کہا جا سکے، وہ ہمارے اختیار میں آتا ہے۔ مگر ایسے ادارے جو صوبائی حکومتوں کے تحت چلتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایک کمپنی ہے جو، یا ایک تعلیمی ادارہ ہے جو صوبائی تعلیمی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر آتا ہے، اس کے لیے صوبائی محتسبین ہیں، صوبائی یعنی کہ پروونشل امبارڈس پرسنز ہیں، اور ہر صوبے میں صوبائی محتسب ہے جو ڈیل کرتا ہے ہراسمنٹ کے ساتھ۔
اوکے، تھینک یو سو مچ فوزیہ وقار صاحب۔ اور ایک اور امپورٹنٹ کوئسچن جو اسی بات سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں، جو اسمال آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں فار دا ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ سائڈ، وہ کس طرح سے ان تمام سہولیات کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو لاز آلریڈی موجود ہیں، اور جو وفاقی محتسب صوبے میں موجود ہیں ان کو کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اویئرنیس لے کر آ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔
ہر جو قانون ہوتا ہے اس کا استعمال اس کو مستحکم کرتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے، مگر ہراسمنٹ کا قانون خصوصاً ایسا قانون ہے، الانگ ود ادر سوشل ایشوز پہ جو قوانین ہوتے ہیں، ایسے یہ قوانین ہیں، ان کی اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں قوانین کی آگاہی بڑھائیں تاکہ لوگ آ سکیں اس قانون کو استعمال کرنے کے لیے۔ ایک جو بہت اہم وہ اداروں کا کام ہے اور لوکل آرگنائزیشنس کا کام ہے کہ انشور کریں، اکاؤنٹیبلٹی بڑھائیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے اداروں میں۔ سیکنڈلی، انکوائری کمیٹیاں ہوں ہر، فار انسٹنس تعلیمی ادارے میں، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو، بہت اہم ہے کہ انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہو، نوٹیفائی ہوئی ہو، اس کا قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اس کے 3 ممبر ہوں گے جن میں سے کم سینئر عورت ہوگی، تو وہ جی، تو لوکل آرگنائزیشنز اکاؤنٹیبل بنا سکتی ہیں اداروں کو کہ وہ چیک کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہے کہ نہیں لگا، انکوائری کمیٹی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے، لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہ نہیں پتہ، پھر آگاہی دینا، ٹریننگز دینا اپنے ادارے کے ممبرس کو ان کمیٹیز کے بارے میں اور ہراسمنٹ کے قانون کے بارے میں، یہ بھی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔
بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ۔ اور ایک اور جو کوئسچن بہت امپورٹنٹ آتا ہے، وہ آتا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کیسز کو ہینڈل کرتی ہیں ایز اے امبرٹس پرسن، بیکاز آپ کے پاس تو یہ، آپ کے آفس میں تو یہ کیسز آتے رہتے ہیں ہر طرح کے، تو آپ کا آفس اس کو کس طرح ڈیل کرتا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا اس ہمیں یہ بتا سکیں کہ صوبائی لیول پہ اس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، ان کا میکینزم سیم ہی ہے یا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟
کیونکہ 2010 میں پاکستان کے لیول پہ قانون پاس ہوا تھا ہراسمنٹ کے خلاف، اور وہی قانون بہت مائنر چینجز کے ساتھ تمام صوبوں میں اڈاپٹ ہوا، تو پروسیجر وہی ہے۔ डेफिनेशनल भी अब थोड़े से मसले यूनिफॉर्म हो गए, इन द सेंस कि अभी एक हाल ही में एक बहुत अहम जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके तहत हरासमेंट को सेक्सुअल इन नेचर होना ज़रूरी नहीं है, तो वो जजमेंट अप्लाई करती है। हाँ, हम वफाक के लेवल पे एक अमेंडमेंट आई है 2022 में, जिसके तहत डिस्क्रिमिनेशन बाय जेंडर ऐड हो गया। बहरहाल, सो मकसद पॉइंट ये है कि तमाम जगह पे फेडरल एंड प्रोविंशियल तकरीबन एक जैसा कानून और प्रोसीजर तो बिल्कुल एक जैसा है। कोई भी शख्स कंप्लेंट करने के लिए अगर आए तो देर एक से ज़्यादा तरीके हैं कंप्लेंट करने के, ऑनलाइन तकरीबन सारे सूबों में भी और वफाक के लेवल पे भी ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म्स हैं जो हमारी वेबसाइट्स पे होते हैं, वहाँ पे इजीली आसान लफ्ज़ों में उर्दू में, रोमन में, अंग्रेज़ी में एक एप्लीकेशन लिखी जा सकती है और वो एप्लीकेशन हमारे पास एकदम पहुँच जाती है। नेचुरली वो ईमेल वो ऑनलाइन है वो, और वो बाकायदगी से उसकी चेकिंग होती है ऑन अ डेली बेसिस ट्वाइस अ डे ताकि हम उनको फिर रजिस्टर करें। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि खुद आके साहिल इस दिन दफातर में आके और एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त दे दे कि जी मेरे साथ ये हरासमेंट हुई। तीसरा तरीका ये है कि फ़ोन पे इतला दे दे, मगर इन तीनों तरीक़ों के बावजूद फिर हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि वो हमारे पास पर्सनली आएँ, क्योंकि नामालूम जो होते हैं ना लोग वो दरख्वास्तें वो नहीं एक्सेप्ट होती। इसका तरीक़ेकार कोर्ट के तरीक़ेकार से मिलता जुलता है, जो बाकायदा कोर्ट्स हैं उनकी तरह। इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद फैसला होता है। उसका मतलब ये है कि तफसील में फिर एप्लीकेशन ली जाती है, उस वो जो चार्ज है या एलिगेशन है, ये तमाम मुतसबीन के ऑफिसेज़ में यही होता है, वो एलिगेशन कम्युनिकेट होती है जिसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त आई होती है उसको, और उससे जवाब मंगवाया जाता है। 3 दिन के अंदर वो कम्युनिकेट होती है, हफ्ते के अंदर अंदर वो जवाब देते हैं कि भाई मैंने हरासमेंट की नहीं की, ये गलत है, सही है, व्हाटएवर, वो जवाब देते हैं। उस जवाब के बाद फिर जनरली एविडेंस की स्टेज आती है, यानी कि दोनों पार्टियों को बुला के उनकी हेयरिंग भी होती है, उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, फिर वो अपने गवाह लेके आते हैं। तो वो गवाह और शवाहिद यानी एविडेंस के तहत ये सारी कार्रवाई चलती है। वो एविडेंस एग्जामिन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, एक दूसरे से सवालात होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे कहते हैं, और वो करने के बाद तमाम रिकॉर्ड को देख के, तमाम गवाहों को सुन के, दोनों पार्टियों को सुन के, उसके बाद फैसला होता है।
आप जो हैं ऑलरेडी RSH को प्रोग्राम से वाकिफ़ हैं, आपका क्या ख्याल है कहाँ ये RSH प्रोग्राम हेल्पफुल होगा और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, उसमें हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि लोगों को अवेयर करते हैं कि सेफगार्डिंग को और आप PSCA को किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कहाँ पर ये जो है ये मजबूत करेगा कवानीन को और कहाँ आपके ऑफिस को भी सपोर्ट कर सकता है ये प्रोग्राम?
देखिए, पहले तो मेरे ख्याल से जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको ख़ुद कानून को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको समझने के बाद आसान ज़बान में उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा ये बताया जा सकता है कि हरासमेंट वाले रवैये कौन से हैं और वो अनएक्सेप्टेबल होंगे, कहाँ पर जाना है, तो आगाही जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले ख़ुद समझें आसान तरीके से और फिर समझाएं। दूसरा, मैंने पहले भी कहा, सपोर्ट करें लोगों को इदारों तक पहुंचने में, उसकी आपकी भी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम जनरल अवेयरनेस कितने लोग सपोर्ट हुए थ्रू द प्रोसेस। यू नो, कॉन्क्रीट फिगर्स लेके आए ना, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड आई एम जस्ट रीकैपिंग, वो अकाउंटेबिलिटी जो करवाते हैं इदारों की, उसमें नंबर्स अगेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि उन्होंने कितने इदारों में जाके चेक किया कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा है कि नहीं लगा, कितने इदारों में चेक किया कि इंक्वायरी कमेटी बनी है कि नहीं बनी, कितने इदारों में जाके आगाही दी या नहीं दी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। अगर आप मेरे से जो पूछ रही थी कि मेरा इदारा कैसे सपोर्ट हो सकता है, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट वी नीड देम टू डू, एंड फॉर दैट दे मस्ट गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन।
ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر جوائن کیا، اور خصوصی شکریہ محترمہ فوزیہ وقار صاحبہ کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اس میں اور ہمیں بتایا کہ کیا کیا تحفظات فراہم کیے گئے ہیں قانون کے حوالے سے۔ اگر آپ آر ایس ایچ کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے نیشنل نمائندہ خالدہ ملا کو لکھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی۔ آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔